जय श्री राधे श्याम। आप सबका इतवार के दिन 22 फरवरी को श्री चंद्र सरोवर धाम में स्वागत है। चंद्र सरोवर बहुत रमणीय स्थान है, बहुत सुंदर अष्टकोणी कुंड है। श्री गिरिराज गोवर्धन की लंबी परिक्रमा में ये क्षेत्र आता है। आज का जो मौसम है उसको वसंत ऋतु कहते हैं, स्प्रिंग सीजन, जो वसंत पंचमी के दिन आरंभ होता है। और वसंत ऋतु यानी हर पेड़ को नए पत्ते, नए फूल और नए फल प्राप्त होते हैं। बहुत सुंदर वातावरण होता है। जो नए नए फूल आते हैं उनको ठाकुर जी को अभिषेक के रूप में अर्पण करते हैं, श्रृंगार करते हैं, फूल बनने आरंभ होते हैं। तो ये जो मौसम है, बहुत दिन चलता है, उसका आनंद होता है। चैत्र महीने के पहले पक्ष में बलदेव जी वृंदावन आते हैं, मथुरा से श्री कृष्ण भगवान का संदेश लेकर गोपियों का आते हैं। और चैत्र और वैशाख दो महीना वो वृंदावन रहते हैं। वृंदावन में अपने गोपियों के साथ रास रचाते हैं और कृष्ण के गोपियों को सांत्वना देते हैं। उसी समय उनका वो लीला भी हुई थी जिसमें उन्होंने जमुना जी को अपने हल से खींचकर अपने पास लाया था, जमुना जी की धारा को अनेक धाराओं में विभाजित कर दिया था। क्योंकि वारुणी पीकर जब वो दिव्य भाव में विभोर हो गए थे तो उन्होंने दूर से जमुना जी को बुलाया, आओ हमारे पास, हम यहाँ पर स्नान करना चाहते हैं। तो जमुना जी ने सोचा कि ये तो ऐसा ही व्यक्ति है, कोई नहीं आई वो। तो अपने हल को आह्वान करके बलदेव जी ने यमुना जी को अनेक धाराओं में विभाजित किया और अपनी ओर खींच लिया। तब यमुना जी उनके पास आई हैं और उन्होंने माफ़ी मांगी है, प्रार्थना भी की है, गौरव भी किया है, फिर बलदेव जी ने उनमें स्नान किया है। ये लीला रामघाट में हुई है, जहाँ पर चीरघाट भी है उसके पास रामघाट है, भयगांव नाम की जगह है, वहाँ पर ये लीला हुई थी रामघाट। कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जो भजन है, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, उसमें रामघाट का नाम आता है। तो वो जो मौसम है चैत्र वैशाख वसंत ऋतु का, उसमें जब कृष्ण भगवान ब्रज में थे तब की यह लीला है। बलदेव जी तब आए हैं जब कृष्ण भगवान यहाँ से मथुरा से हस्तिनापुर द्वारका चले गए, तब की यह लीला है जब बलदेव जी आए हैं। लेकिन चंद्र सरोवर की जो लीला है वो जब ठाकुर जी यहाँ थे तब की है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले रास रचाया 7 साल की उम्र में। जब शरद ऋतु आया तो उसकी पूर्णिमा में भगवान ने बंसीवट पे बंसी बजाई और बीच रात में गोपियों को बुलाया और नृत्य किया, और फिर अनेक नृत्य हुए, अनेक रास लीला हुई। जब वसंत ऋतु आया तो ठाकुर जी अपने गोपियों को लेकर यहाँ आए, मतलब गिरिराज पर्वत के क्षेत्र में, तलहटी में आए, और यहाँ पर अपनी गोपियों के साथ में सुंदर नृत्य किया उन्होंने, रास नृत्य। ऐसा उसका वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी गोपियों को लेकर यहाँ नृत्य कर रहे थे तो जो सुर ताल यहाँ पर चल रहा था, जानते हैं ना अधिकतर सब वाद्य तो होते हैं लेकिन बंसी और कंगन और पायल का भी यहाँ पर साथ होती है। अद्भुत सुर और ताल के साथ भगवान नृत्य करते हैं, दिव्य सुर और ताल के साथ। तो जैसे ही ये नृत्य आरंभ होता है तो आकाश में सब देवताएं जो इस विद्या में निपुण हैं, गंधर्व किन्नर यक्ष किम पुरुष जितने भी लोग हैं, वो सब अलग अलग लोगों के अलग अलग कुशल, जन्म से कुशल रहते हैं, वो सब आकाश में इकट्ठा हो जाते हैं और अपने अपने वाद्य, अपने अपने सुर, अपने अपने ताल लेकर वो जो धुन यहाँ चल रही है उस पर कोशिश करते हैं कि मिलाए उसको या उसको साथ दे दें। लेकिन उनको हर जगह पर ऐसा ही हुआ है, जब कालिया पे नृत्य कर रहे थे तभी आकाश में देवता लोग सुर मिलाने का कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है। जहाँ पर भी नृत्य करते हैं वहाँ पर सब लोग आते हैं और कोशिश करते हैं लेकिन उनको पकड़ में नहीं आता है वो सुर, जिसमें भगवान अपना लीला करते हैं। उसके बाद इंद्र आए, इंद्र ने यहाँ पर नीचे उतर के एक शिला पर वाद्य बजाया, मतलब बाजनी शिला से ड्रम बजाया, क्या बोलते हैं उसको, भंबेरी बोलते हैं ना, बड़ा होता है वो, बहुत नगारा, नगारा बोलते हैं उसको, वो बजाया उन्होंने, साथ देने का प्रयास किया। वो शिला वो गौशाला के अंदर है, सुरशाम गौशाला, तो वो इंद्रनी, इंद्र की बाजनी शिला बोलते हैं उसको,
इंद्र नगारा बोलते
हैं, वही वही कह रहा हूँ, एक ही बात है वो, हाँ ठीक है ठीक है, बात तो वो सब आनंद देखकर चंद्र भी आए थे वहाँ पर, और जब गोपियाँ नृत्य कर रही हैं तो उसमें सभी गोपियों का जो स्वेद है वो निकलने लगा, दिव्य जल शरीर से निकलने लगा, और वो सारा जो जल है वो एकत्र होकर कुंड बनने लगा। तो चंद्र देवता वो इतने भाव विभोर हो गए देखकर, इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने समुद्र मंथन के समय जो अमृत थोड़ा रखा था अपने पास स्टॉक के रूप में, उसमें से कुछ बूंदे डाल दी इसके अंदर, ये सोचकर कि यह ऐसे ही रहे, कभी नष्ट ना हो जाए। और नित्य चलता रहा चलता रहा, भाव विभोरता से बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। तो चंद्र देवता एकदम भाव विभोर हो गए और इस कुंड के अंदर पिघल कर एक रूप हो गए, इतने भाव विभोर हो गए, इसलिए नाम पड़ा चंद्र सरोवर। तो ये वो सरोवर आपके सामने है। ये जो वृंदावन है ना, इसमें बहुत अद्भुत चीज़ें हैं। अगर कोई अश्रद्धालु को बताएंगे कि यहाँ पर राधा कृष्ण के आंसुओं से बना है, यहाँ पर राधा रानी के क्रोध मान के आंसुओं से बना है, यहाँ पर अचंभित आंसुओं से बना है, यहाँ पर सभी 3 करोड़ रानियों के अश्रु से बना है, तो लोग बोले क्या है बकवास की बात है। यहाँ पर भी वही है, दिव्य स्वेद निर्माण हुआ उसके द्वारा चंद्र सरोवर निर्माण हो गया, चंद्र पिघल गए उसके अंदर, उधर मदन टेर पे मदन स्वयं पिघल गए वृंदावन में, वहाँ पर ब्रह्मा जी पछतावा किया उधर, और निकले यहाँ से तो फिर पछतावा पूरा नहीं हुआ, तो एक जगह वृंदावन में उतरे बंसी भट्ट के पास, पूरा रोए, और बहुत बड़ा बड़ा गहरा कुंड वहाँ बना हुआ है, पश्चाताप के आंसू। ऐसे अद्भुत कुंड कहीं भी विश्व में नहीं है जैसे ब्रज में है, इतनी सुंदर लीलाओं से जुड़े हुए, श्रद्धा होगी तो ये बहुत 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 दिव्य है समझने के लिए, ट्रांसेंडेंटल ऑल्सो, ट्रांसेंडेंटली प्योरीफाइंग ऑल्सो, शुद्ध करने वाला भी है अगर आप समझते हैं उसको, श्रद्धा से सुनते हैं तो सुनने से श्रद्धा से भी हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, कितनी शक्ति है उसके अंदर। और जैसे आज भी वो आपको दिखाई पड़ रहा है उससे भी दिव्यता का अनुभव आता है उसका, अच्छा है तो उसके बॉटल में बैक्टीरिया होगा कुछ और कुछ होगा, लेकिन जैसे आपके आँखों को दिखाई पड़ रहा है उससे भी आपको पता चलेगा कि ये दिव्य स्थली है भगवान की, जिस तरह से पेड़ यहाँ पर है, जिस तरह से जलाशय बना हुआ है, जिस तरह से कुंड बना हुआ है, ये नहीं कि इसकी मरम्मत की गई है बढ़िया, उसको सीढ़ी बना दी गई इसलिए वो सुंदर दिख रहा है, उसकी सुंदरता जो है उसके लीला की वजह से है, वो सुंदरता बाहर भी प्रकट हो गई है, उसकी सीढ़ियों में भी और उसके आसपास के वातावरण में भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। चावल को आपके दिमाग पर असर होने मत दीजिए, खीर को मत दीजिए। तो जब ये लीला चल रही थी तब एक अद्भुत लीला और भी हुई, वहां से बलदेव दाऊजी भाई या भैया गोवर्धन पे आ गए, वैसे जगह बहुत पास में गोवर्धन के, अभी दूर क्यों हो गई, क्योंकि गोवर्धन रोज नीचे 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 आ रहे हैं, और पर्वत कैसा होता है ना, नीचे ही बड़ा होता है और ऊपर छोटा होता है, तो जब वो ढसता है तो क्या होता है, ऐसे ऐसे पास में आ जाता है और नीचे चला जाता है। तो जब लीला चल रही थी दूर से, तभी थोड़ा दूर ही था क्योंकि बड़ी परिक्रमा में आता है, तो वहां पर गिरिराज के ऊपर बलदेव जी सडनली आ गए, देखा कि छोटे भैया लीला कर रहे हैं तो अपनी सखियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, तो अगर समझो उसने मुझे देख लिया तो नृत्य बंद करेगा ना, वो उसको संकोच होगा कि बड़े भैया के सामने कैसे कर सकता हूँ, इसलिए बलदेव जी ने अपने आप को छुपाया, कैसे, दंडवत के पोजीशन में आ गए, वो खड़े थे ना, वो दंडवत के पोजीशन में झुक गए, और झुक कर छुप छुप के, मतलब उनको डिस्टर्ब ना हो जाए लेकिन मुझे भी दिखाई पड़े, लीला चलती रहे उसका आनंद मुझे भी मिले, ये भाव से वो झुक गए, और झुकने की पोजीशन में वो भाव विभोर हो गए। अभी अति आनंद के लक्षण होते हैं, कई पसीना निकलता है, आंखों से आंसू निकलते हैं, रोमांच हो जाते हैं, शरीर गदगद होता है, कंठ भी गदगद होता है, ऐसे 8 लक्षण बताए गए हैं। उसमें से एक लक्षण है स्तंभ। स्तंभ का मतलब क्या होता है? स्टंड, यू बिकम लाइक वुड, लकड़ी की तरह बन जाते व्यक्ति एकदम, क्या बोलते हैं इसे, बिना मोशन के, अनमूवेबल। तो वो दंडवत के सिचुएशन में ही भाव विभोर हो गए और उस अवस्था में उन्होंने एकाग्रता से ठाकुर जी की लीला को वहां से देखा। उसका नाम है ढोका दाऊ जी। वो गुलाबी रंग का मंदिर है, वो गोविंद कुंड के थोड़े से आगे हैं और वहां से सीधा इसका दर्शन है। तो वहां से उन्होंने दर्शन किया और वो मंदिर गिरिराज के ऊपर है, इसलिए हम लोग जो अंदर जाते नहीं हैं, दूर से ही प्रणाम करते हैं। वो शिला भी वहाँ पर है जिस पर वो झुके हुए थे, और शिला भी वहाँ पर दोलायमान हुई थी। तो ऐसा ही सुंदर स्थान है चंद्र सरोवर। तो ये स्थानों को हमारे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, सिस्ताने हेरी बोआमी प्रणयी भकत संगे। प्रामाणिक भक्तों के साथ में इन स्थानों का दर्शन करना चाहिए, इस हृदय की शुद्धि होती है और उस जगह पर बैठकर लीला का श्रवण करने से आत्मा पवित्र हो जाती है। इसके थोड़ा आगे जाएंगे आप तो पेठा गांव है, उसका नाम है प्रविष्ट वन, संस्कृत में उसका नाम प्रविष्ट वन है, लोकल नाम पेठा गांव है। और उसका नाम एक और भी है पारासोली, वो भी लोकल नाम है, रियल नाम क्या है, परम रासस्थली, परम रासस्थली जो ये है, ये और पेठा गांव जो है पूरा मिलकर एक क्षेत्र है रासस्थली का। ये भगवान का चिरंतन रासस्थली है, यहाँ पर निरंतर भगवान रासस्थली करते, रासलीला करते रहते हैं, खास करके वसंत ऋतु में। तो आगे जो गांव है उधर भी बहुत सुंदर लीला, समय नहीं मार जाने के लिए वहाँ पर, लेकिन उसका नाम है प्रविष्ट वन। मतलब जब वर्षा घनघोर हो रही थी तभी सबने कृष्ण बलराम को पुकारा और फिर कृष्ण बलराम उनको बोले चलो हमारे साथ, कृष्ण के हमारे साथ चलो। तो वो उनको वहाँ ले गए और वहाँ पर एक गुफा में उतरे, उसका नाम है प्रविष्ट गुफा। और प्रविष्ट गुफा में जमीन के अंदर गए और वहाँ से गिरिराज को उठाया उन्होंने, उसका नाम है प्रविष्ट गुफा। वो गुफा का दर्शन हमने किया है, अभी वो बंद कर दिया उसको। तो प्रविष्ट वन में एक और सुंदर लीला हुई है, यहाँ पर जब ही रास हुआ है तो एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। तो यहाँ पर भी गोपियों ने कभी कभी मान मतलब गर्व किया था कि हमारे साथ नाच कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं हर जगह पर जहाँ पर रास करते हैं भगवान, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण नाचते हैं और वो इतने मग्न होते हैं, उनको लगता है कि मेरे साथ नाच रहे हैं। तो जब थोड़ा गर्व होता है तो ठाकुर जी अंतर्धान हो जाते हैं, कभी कभी मान को भंग करने के लिए अंतर्धान होते हैं अभिमान को, कभी कभी मजाक के लिए होते हैं, कभी कभी चिढ़ाने के लिए होता है, अलग अलग भाव होता है उनका। कभी कभी राधा रानी को लेकर जाते हैं और बाकी सखियाँ अलग अकेले रह जाती हैं, कभी राधा को भी छोड़ के जाते हैं और अकेले गायब हो जाते हैं। इस प्रकार की अनेक अनंत रासलीलाएँ हैं, अनंत भगवान का विविधता है उसके अंदर। तो इसमें क्या हुआ, राधा और गोपियों को थोड़ा सा कहते हैं ना मजाक, हास्य विनोद करने के लिए अचानक अंतर्धान हो गए, तो सब लोग ऐसे भाव विभोर हो गए एकदम, कहाँ गए कहाँ गए कन्हैया कहाँ गए, तो ढूंढने लगे, रता पताओं को पूछने लगे, वेर इज कृष्णा, कभी देखा है हमारे कृष्ण को कहाँ गए। तो हमारे कृष्ण भगवान ने क्या किया, थोड़ा मजा कर लेते हैं, तो चतुर्भुज विष्णु के रूप में खड़े हो गए रास्ते में। विष्णु बड़ा रहस्य है भगवान का, वो विष्णु के रूप में खड़े हो गए चार भुजा वाले। अभी समझो आपको अगर रास्ते में विष्णु मिलते आप क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे ना उनको, तो विष्णु भगवान है भाई, कोई ऐसे थोड़ी से खड़े हैं, भगवान विष्णु स्वयं खड़े हैं पूरे तेज के साथ में, ऐसा नहीं कि ऐसे ही खड़े हैं। तो गोपियों का भाव देखो कैसा है, ऐसा मन फिक्स्ड है कृष्ण के ऊपर। वो विष्णु को पूछते हैं आपने कहीं कृष्ण को देखा है क्या, तो विष्णु कहते हैं इस तरफ गए। तो सब लोग ना बिना विष्णु को, मतलब ऐसा कोई है ही नहीं कि भाई विष्णु है, अभी इतना मन कृष्ण में लगा हुआ है कि वो विष्णु भी उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अपराधी भावना नहीं है, इतना एब्सॉर्प्शन है। शकुंतला जब भाग गए थे जंगल में दुष्यंत के भाव से, बीच रात में वो जंगल में भाग गई थी, और जब जंगल में पहुंची तो दुष्यंत ने उसको बताया कि जंगल में कितने खूंखार जानवर हैं, कितना भयंकर जंगल है ये। तो वो सोचकर डरने लगी, लेकिन तब नहीं डरी जब भाग रही थी, क्योंकि तब शकुंतला दुष्यंत के प्रेम भाव से पूरी वशीभूत होकर ऐसे भाग रही थी मानो पता ही नहीं क्या चल रहा है। जब भाव में होता ना आदमी, तो उसके प्रति भय और हर प्रकार की भावना सब खत्म हो जाती है, जस्ट फुल्ली एब्सॉर्ब्ड। तो इस तरह से यहाँ पर इतने भाव में है कि वो विष्णु को भी पूछ रहे हैं कि कृष्ण को कि देखा है क्या आपने, ऐसा नहीं दंडवत प्रणाम प्रणाम स्वीकार कीजिए, हमारा एक प्रश्न है बोल सकते हैं क्या उसको उत्तर, ऐसा नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन वेर इज कृष्ण, तो वो भी भाव विवर होते कृष्ण विष्णु के रूप में खड़े ना, वो भी बोलते हैं इधर है। उसके लास्ट में राधा रानी आती है, और वो कैसे आती है, वो भंवरे से बात करते करते आ रही है, भंवरा गोल गोल घूम रहा है और भंवरे को वो ताने दे रही है कि तू बहुत ऐसा ही है, तू वैसा ही है, कृष्ण समझकर उसको बुरा भला बोल रही है, उससे संवाद करते 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 आ रही है। वो पूछते हैं तुमने कृष्ण को देखा है, तो जो राधा रानी का भाव था वो देखकर ये विष्णु बने हुए जो भगवान हैं उनकी दो भुजाएं पिघल जाती है, और दो ही भुजा रहती है, मतलब ओके आगे बताता हूँ। तो विष्णु बने हुए मतलब ऐश्वर्य को दिखाने का प्रयत्न करने वाले जो कृष्ण हैं उनके ऐश्वर्य क्या है, दो के ऊपर दो ना, तो वो दो पिघल जाते हैं, फिर माधुर्य में आ जाते हैं। बाय फोर्स ही कैनॉट मेंटेन हिज टू आर्म्स, ही जस्ट गेट मेल्टेड कंप्लीटली, हैज टू रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा, इन फॉर्म ऑफ इन फ्रंट ऑफ राधा रानी। ये स्थिति है यहाँ की। तो वो जगह है पेठा गांव जहां पर कमल में विष्णु भगवान खड़े हैं और चार भुजा में खड़े होकर इनको बहकाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राधा रानी के प्रेम की वजह से दो भुजा उनकी पिघल जाती है। और वहां पर क्योंकि विष्णु आए हुए हैं तो वहां पर क्षीर सागर भी निर्माण हुआ है, जो वैकुंठ है यहाँ इस लोक का, जो ब्रह्मांड का वैकुंठ है वो क्षीरोदक शाही विष्णु वहां पर रहते ना, वो लोकल वैकुंठ है। तो वो वैकुंठ किसमें है, दूध के सागर में, तो दूध का सागर भी वहां प्रकट हो गया है। एक सागर वहां प्रकट हो गया है काम्यवन में, बलदेव जी का दूध हाँ लोटा लुढ़क गया उसकी वजह से, और एक विष्णु जी यहाँ पर खड़े हो गए इसलिए उनके साथ में क्षीर सागर प्रकट हो गया, क्योंकि विष्णु जी खड़े हैं मतलब क्षीर सागर में है ना वो, तो क्षीर सागर के साथ प्रकट हो गए वो उधर। तो जो वो पेठा गांव है प्रविष्ट वन, वो क्षीर सागर भी है, वैकुंठ है, वो वैकुंठ प्रकट हो गया है ब्रज में, और वहाँ पर दर्शन है विष्णु जी का, लेकिन वो विष्णु नहीं है, वो श्री कृष्ण स्वयं है। और विष्णु जहाँ खड़े हैं उसी के बाजू में वो गुफा है, प्रविष्ट गुफा, सब सुंदर स्थान है वो। प्रविष्ट गुफा की एक सुंदर कथा है जिसके बाद में एक अपना विश्राम दूंगा कथा के लिए। ये जो श्री कृष्ण है उन्होंने बहुत लीला किया लेकिन फिर भी उनका दिल नहीं भरा, जब अंतर्धान हो गए फिर भी उनकी साक्षी लीला करने की बहुत इच्छा थी, इसलिए वो गोपाल जी के रूप में प्रकट हो गए। मतलब जो गोपाल जी तो वही गोपाल हैं जो उन्होंने गोवर्धन को उठाया था, लेकिन तब वे मूर्ति नहीं बने थे, लेकिन अपनी आगे की साख्य लीला की जो प्यास है उसको बुझाने के लिए वो गोपाल जी के रूप में मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए, माधवेंद्र के पुरी के लीला के साथ में वो प्रकट हुए गिरिराज जी गोवर्धन से, और माधवेंद्र पुरी ने उनको गिरिराज के ऊपर स्थापित किया, और फिर उनके अष्ट सखा हुए हैं, वो कृष्ण लीला के अष्ट सखा नहीं है, वो नंददास जी ध्रुवदास जी वल्लभाचार्य विठलनाथ जी ऐसे उनके आठ हैं सखा, अष्ट छाप कहते हैं उनको। वो अभी करीब करीब 700-800 साल पहले की लीला है, और कृष्ण भगवान जब थे वो 5400 साल पहले की लीला है, ठीक है ना। तो श्रीनाथ जी भगवान की लीला में एक अष्ट छाप में दो हुए हैं, एक चतुर्भुज जी और एक कुंभनदास जी, मुझे छः को नाम याद है, एक है गोकुलनाथ जी, एक है विठलनाथ जी, एक ध्रुवदास जी, नंददास जी, कुंभनदास जी और चतुर्भुजदास, छः मुझे याद, दो का याद नहीं मुझे, और सारे महान परमहंस भक्त हैं सभी, लेकिन सब ये बाल रूप में थे, सखा भाव में थे सब लोग। और इनके साथ में कभी भगवान मूर्ति रूप में लीला करते थे, कभी मूर्ति से बाहर आकर व्यक्ति रूप में आके लीला करते थे, एज पर लॉर्ड्स डिजायर, जब चाहे तब मूर्ति, जब चाहे तब प्रत्यक्ष। हाँ बहुत सुंदर लीला है इनकी, बहुत सुंदर लीला है, पुष्टि मार्ग में इनका बहुत गौरव होता है, उनके कथा की गायन सब सबने गीत लिखे हैं। सूरदास जी इसमें से एक है बाय द वे, और मैं आपको बताने को भूल गया, इस जगह पर सूरदास जी ने 70 वर्ष तक निवास किया है, 70 वर्ष तक यहीं पर उनकी कुटी है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उनकी कुटी है, इसलिए इसको कहा गया सूर श्याम कुटी, सूर श्याम गौशाला। तो यहाँ पर 70 वर्ष तक बैठकर सूरदास जी ने अपने सारे भजन लिखे हैं। वो अंधे थे लेकिन उनको सारी लीलाएं दिखाई पड़ती थी, ही वॉज हैविंग डायरेक्ट दर्शन ऑफ लॉर्ड्स लीलाज, और वो लीलाओं को देखते हुए वो भजन लिखते थे। हिज लीला, हिसका इनके जो भजन है वो प्रत्यक्ष देखे हुए लीलाओं का वर्णन है, वो ऐसे उनकी मानता है सूरदास जी की। तो वो यहाँ पर उनका आश्रम भी है, तो सूरदास जी भी उसमें से एक हैं अष्टछाप में से। तो जो कुंभन दास जी थे, वो कुंभन दास जी बहुत बड़े भक्त थे, उनको प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में दर्शन हुआ करता था। तो एक बार वो प्रविष्ट गुफा के पास में ध्यान में बैठे थे, कहाँ पर, जहाँ पर भगवान ने गिरिराज जी को उठाया था अंदर जाकर। तो प्रविष्ट गुफा के पास बैठ कर वो ध्यान लगा रहे थे, तो उनको ध्यान में एक अद्भुत लीला नजर आई। सब लोग सुन रहे हैं क्या? तो ये लीला ये थी कि वो देख रहे हैं कि एक घर में ठाकुर जी बालक रूप में माखन चोरी कर रहे हैं। कैसे चोरी कर रहे हैं? लटके हुए हैं मटके पर और माखन खा रहे हैं, यू अंडरस्टैंड, अकेले हैं, लटके हुए हैं, माखन खा रहे हैं, और इतने मग्न हैं कि वो खाते खाते उनकी धोती छूट रही है। हमारी कैसी होती है पुरुषों की, पीछे होती है ना, वो जो गृहस्थ लोग या ब्रह्मचारी पहनते हैं, तो वो हिस्सा छूटने लगा उनका, और अगर संवारा नहीं उसको तो वो पूरा छूट जाएगा, ऐसी अवस्था हो गई। और माखन भी खाना है, माखन इतना प्रिय है ना कि उसमें ब्रेक देना मुमकिन नहीं है, और धोती को संवारना है तो ब्रेक देना पड़ेगा उसमें, या तो खाते रहो धोती छोड़ने दो, या तो ब्रेक लो धोती को संवारो फिर खाओ, लेकिन उनको दोनों साथ में करना है, तो कैसे करेंगे बताओ? चार हाथ, बहुत पपी होशियार है बहुत, हाँ। कंधे के पीछे से दो हाथ उत्पन्न हो गए, पीछे गए खिसकती धोती को ठीक किया, वापस चले गए, और पहले वाले हाथ मक्खन खाते रहे। कितने हाथ हो गए? चतुर्भुज। तो ये लीला देखने के बाद में, उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी, तो जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा चतुर्भुज दास, तो वो भी उनके अष्ट सखा में से एक बने, कुंभना के चतुर्भुज दास। तो ये चतुर्भुज दास जो थे, इसके साथ भगवान ने बहुत लीला किया, बहुत बहुत अति लीला किया। अरे जब चाहे तभी वो मंदिर में आते थे तो उसको देखते ही ये मूर्ति से बाहर निकल के आते थे अदृश्य रूप में, और उनसे वार्तालाप, उनसे खेलना, उनसे डोलना और नाच करना, उनके साथ में कभी घोड़ा बनना, कभी कुछ करना, और किसी को दिखाई पड़ता नहीं था, और सब लोग समझते थे कि कुंभना का जो लड़का है वो पागल है, कभी भी आता है मंदिर में तो बकबक करते रहता है, पता नहीं किससे बात करते रहता है। लेकिन वास्तव में ठाकुर जी स्वयं मूर्ति से बाहर निकल कर, मतलब बाकी लोगों के लिए वो मूर्ति में है, उनकी पूजा चल रही है, भोग लग रहा है, सब कुछ अपने आप चल रहा है, लोगों के लिए वो सब चल रहा है, और इनके लिए मूर्ति से बाहर आकर प्रत्यक्ष संवाद हो रहा है, और उसको ये पता नहीं है कि लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं, ये तो उनके साथ रिश्ते में है, वो पूरे मग्न है, उनको पता नहीं है कि लोगों को दिखता है कि नहीं दिखता है, इतने भाव में रहा करते थे। तो एक दिन जैसे ही कुंभना के बालक चतुर्भुज दास मंदिर में आए, तो ठाकुर जी तुरंत मंदिर से बाहर आए, तभी गोकुलनाथ जी विठलनाथ जी सेवा कर रहे थे अपनी, तो ठाकुर जी सेवा उनके ले रहे हैं और आरती पूजा हो रही है, और ठाकुर जी बाहर आ गए और बोले, अरे चतुर्भुज आज मुझे घोड़ा बनना, मेरे लिए मुझे घोड़े की सैर करने की इच्छा है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, चतुर्भुज घोड़ा बन गया। अभी वो घोड़ा बना हुआ है, ठाकुर जी उसके ऊपर बैठ गए, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहे हैं, समझ में आपको आया? और ये पूरा घोड़ा बन के बात कर रहा है ठाकुर जी से, हंस रहा है, खेल रहा है, और ठाकुर जी भी हंस रहा है, खेल रहा है, किसको सुनाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, और ये पूरे मंदिर में घोड़ा बन के घूम रहा है। सब लोग देख रहे हैं कि कुंभना का लड़का पागल लड़का है। इतनी बार में क्या होता है, बहुत देर ठाकुर जी झुलाते हैं उसको यहाँ से वहाँ, अरे हैट 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 करके बहुत झुका, और भागता है इधर उधर सब जगह पे, और बीच में कहता है, अरे कन्हैया ठाकुर जी लाला जी, थोड़ा सा लघु शंका करने की इच्छा हो रही है, टाकी फूल गई है। ठाकुर जी क्या कहते हैं, अरे घोड़ा बने हो, घोड़ा की तरह करो, घोड़ा को थोड़ी ब्रेक मिलता है, वो तो अपना काम करते करते दूसरे काम भी करते रहता है। तू भी ऐसा ही कर, घोड़ा बना तो पूरा ही घोड़ा बन। तो फिर उसने वहीं शुरू कर दिया अपना काम, वो पूरे मंदिर में घूम रहा है, सब जगह करते 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 ही घूम रहा है। तो सब लोगों ने जब देखा ना मंदिर में, अरे कुंभना का लड़का इतना बदमाश हो गया है कि मंदिर में लघु शंका कर रहा है, उसको शर्म नहीं, वो जोर जोर से हंस रहा है क्योंकि ठाकुर जी उसको हंसा रहे, ऊपर से मार रहे, पीट रहे, मजाक कर रहे, वो हंस रहा है और वो पेशाब भी करते जा रहा है। तो सब लोग आके उसको मारने लगते हैं। तो जब मारते हैं ठाकुर जी उससे ऊपर से उठ जाते हैं और दूर खड़े होकर हंसते हैं और सब लोग उसको पीट रहे हैं। तो सब लोग निर्णय लेते हैं इस बच्चे का बहुत हो गया अभी, पहले पागलपन तो ठीक था, किसी को डिस्टर्ब हो रहा नहीं था, आज तो मंदिर को भ्रष्ट कर दिया ऐसे पूरा। तो चतुर्भुज को कुंभना को बुलाते हैं, बोलते कल से ये लड़के को मंदिर में आना बंद। तो जब ये ठाकुर जी सुनते हैं कि गोसाइयों ने उनको भी मंदिर से बरी कर दिया है, तो फिर रात को जब शयन आरती होती है तो ठाकुर जी मूर्ति से विट्ठलनाथ जी से बात करते हैं, अरे विट्ठलनाथ जी वो तो मेरा भक्त है, आज मैंने ऐसा ऐसा किया इसलिए वो ऐसा ऐसा हुआ, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, मैंने उसको कहा था कि करो इसलिए उसने किया, लेकिन उसको मंदिर में आना बंद नहीं करना, मैं बहुत नाराज़ हो जाऊँगा। तुरंत गोसाई जी जो थे, मतलब वो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं दोनों, विट्ठलनाथ जी और गोकुलनाथ जी, वो तुरंत अपना ऑर्डर वापस ले लेते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं करना है। सबको बताते लीला क्या हुई, अदृश्य लीला जो केवल चतुर्भुज दास के लिए थी। तो ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएँ हैं श्रीनाथ जी की। और श्रीनाथ जी जब यहाँ पर प्रकट हुए तो बहुत सुंदर लीलाएँ था श्रीनाथ जी की। तो वो गिरिराज के ऊपर थे ना, जो महाप्रभु चैतन्य आए उसके बाद में, क्योंकि माधवेंद्रपुरी महाप्रभु जी के गुरु हैं, दो पीढ़ी पहले वाले, तब तक माधवेंद्रपुरी जा चुके थे, ईश्वरपुरी के गुरु हैं वो, उनसे महाप्रभु ने शिष्य दीक्षा लिया। तो जब महाप्रभु जी वृंदावन में आए तब उनको गोपाल जी का दर्शन करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन चढ़े कैसे, वो तो भक्त बनकर आए हैं, कृष्ण के रूप में तो वो डोलते थे गिरिराज के ऊपर कृष्ण बलराम साथ में, लेकिन भक्त बनकर आए तो चढ़ नहीं सकते, लेकिन इच्छा तो बहुत है। तो गोपाल जी भी देख रहे हैं कि अरे चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करना है, तो गोपाल जी ने ऐसा एक यहाँ पर बवाल चढ़ाया कि मुगल आ रहे हैं, मुगल, ऐसा पूरा अफवाह फैला दिया। जैसे मुगल आ गए सब लोग गुसाई लोग गोपाल जी को लेकर भाग गए नीचे, और वहाँ से गए उधर, उधर एक गाँव है उसका नाम क्या याद होगा बताता हूँ मैं आपको, दूसरा रास्ते पर, डीग रास्ते पर है, वहाँ पर जाकर वो मूर्ति को रख दिया उन्होंने, और तुरंत महाप्रभु जी वहाँ पहुँच गए। और महाप्रभु जी 7 दिन तक वहाँ पर दिन रात कीर्तन किया गोपाल जी के सामने, आनंद से विभोर होकर, अरे गोपाल जी नीचे आ गए मेरे लिए, गोपाल जी पहाड़ से उतर कर नीचे आ गए। और 7 दिन के बाद मालूम पड़ा कि यह सब तो ऐसे अफवाह थी। तो फिर महाप्रभु जी के नेतृत्व में फिर गोपाल जी की मूर्ति को बड़े ही धूमधाम से जुलूस के साथ में वापस पहुँचाया गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पीढ़ी रूप सनातन गोस्वामी की, ऐसे ही रूप सनातन गोस्वामी को इच्छा थी गोपाल जी दर्शन करने के लिए, वो भी भक्त हैं भगवान के, जब मंजरी रूप में थे तो अभी सब लोग लीला करते थे गोवर्धन के ऊपर, लेकिन अभी तो भक्त के रूप में आए हैं तो चढ़ नहीं सकते हैं। फिर गोपाल जी ने अफवाह उठाया कि आ रहे हैं मुगल, आ रहे हैं मुगल, आ रहे हैं। तो उस समय गोसाई जी उनको लेकर भागे मथुरा, और उस समय 30 दिन मथुरा में रहे गोपाल जी, और सारे अपने 6 गोस्वामी रूप गोस्वामी सुना सभी लोग पहुंच गए मथुरा में, और 30 दिन तक गोपाल जी का संग का आनंद लिया उन्होंने, और फिर बड़े बड़े जुलूस के साथ में उनको वापस गोपाल जी के ऊपर पहुंचाया गया। जैसे गोपाल जी के बहुत सुंदर सुंदर लीला है, उस जगह का नाम है गुलाल कुंड, हमारी यात्रा कई बार गई है वहाँ पर 24 आवर्स अ डे 12 मंथ्स एन ईयर होली चलती रहती है। क्या नाम है उसका जगह का, गांठोली, गांठोली गाँव है वो, ग्रंथोली गाँव, वहाँ पर राधा और कृष्ण के चुनरियों को और दुपट्टे को बांध दिया गया था, गांठ मार दी गई थी। तो वहाँ पर एक कृष्ण का पेड़ है और एक राधा रानी का पेड़ है, उसमें भी एक गांठ पड़ी हुई है गांठोली गांव में। तो उस गांव में वो गोपाल जी की मूर्ति गई थी और महाप्रभु जी ने वहाँ पर 7 दिन तक कीर्तन किया था। ऐसे गोपाल जी फिर फाइनली जब ही रियल में आ गए मुगल, तो फिर उनको लेकर नाथद्वार गए, और नाथद्वार में फिर पुष्टि मार्गी विष्णु स्वामी इनके संप्रदाय के भक्तों के सेवा में आ गए, वो फिर वो बालक रूप में उनकी सेवा करने लगे, अभी नाथद्वार में विराजमान है। लेकिन रहस्य की बात यह है कि जब हम बरसाने से गोवर्धन आते हैं तो कहीं भी जाने के पहले बीच में एक मंदिर आता है लेफ्ट में, बहुत बड़ा, अभी हमारा जाम कहाँ फंस गया था, उनको लेफ्ट टर्न मुड़ना था ना वहाँ पर, उसको क्या कहते हैं, दान घाटी। गिरिराज जी का मिष्ठान का भंडार किधर है, दान घाटी पर है। तो दान घाटी जब पीक पर है ना, तो पीक में एक बड़ा मंदिर है और नीचे उतरने के बाद में ठाकुर जी का वहाँ पर विग्रह है। आज भी आप चेक कर सकते हो, बहुत लोगों ने इसको कन्फर्म भी किया है कि जो श्रृंगार श्रीनाथ जी में नाथ द्वार में नाथ जी का होता है, वही श्रृंगार उसी रंग का यहाँ पर होता है एवरी डे। तो कुछ लोगों ने एक दिन में ये कन्फर्म भी किया हुआ है कि ठाकुर जी की दिव्य लीला है, क्योंकि वो गोपाल जी जो यहाँ से वहाँ गए हैं और जो यहाँ पर विराजमान दान घाटी में हैं गिरिराज जी महाराज, वो दोनों समान हैं, एक ही हैं। तो अद्भुत लीला है सब ठाकुर जी की। और अभी मैं 16-17-18 जनवरी को नाथद्वार जाके आया, पहले भी कई बार गया था, इस बार भी गया। इतना वहाँ प्रभाव है ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का, कि आपको पता चलेगा वहाँ जाके कि श्रीनाथ जी वहाँ पर है। उनका अस्तित्व का प्रभाव हर जगह पर, हर वस्तु पर, हर लोगों पर, हर इलाके पर दिखाई पड़ता है। इतने सारे भव्यता है उनकी, उनके भोग, उनके दूधशाला, उनके फूलशाला, उनके पान घर, दूध घर, हाँ, सब्जी घर और मिठाई घर, और टनों में भोग लगता है भगवान को। और वो श्रीनाथ जी में भी अब औरंगजेब पहुंच गया था। देखो औरंगजेब ने क्या क्या नहीं, सब जगह पर मंदिर तोड़ तोड़ कर मंदिर का ध्वंस कर दिया उसने। तो जब पता चला कि यहाँ के गोपाल जी वहाँ गए हैं, तो उधर भी पहुंच गया वो तोड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जैसे ही वहाँ पहुँच गया वो, उसको लाखों मधुमक्खियों ने काटा, उसको और सैनिकों को, औरंगजेब को, इतना परेशान हो गया वो। हाँ, तलवार से आदमियों को काटने वाला आदमी मधुमक्खी को काट नहीं सका, जस्ट इमेजिन। हाँ, वैसे नेपोलियन जब इंडिया में आया था, नेपोलियन ने अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका क्या हुआ, उसको मच्छर ने काटा, उसको मलेरिया हो गया, वो मर गया वो, इमेजिन। विश्व को जीतने वाला सिकंदर, मच्छर से, भारत के मच्छर से मृत्यु हो गई उसकी। हाँ, तो वैसे ही औरंगजेब जब पहुंचा वहाँ पर विध्वंस करते करते, तो मधुमक्खियों ने उसको इतना काटा कि परेशान हो गया वो। तो समझ गया कि यहाँ के ठाकुर जी कोई अद्भुत चीज़ है। तो वो मधुमक्खियों के आतंक से इतना परेशान हो गया, लोगों से पूछने लगा क्या करूँ। तो लोगों ने कहा अपनी दाढ़ी से नाथ जी महाराज की सीढ़ियाँ साफ करो। तो औरंगजेब ने अपनी दाढ़ी से श्रीनाथ जी की सारी सीढ़ियाँ साफ कर दी, तभी वो मधुमक्खियों के आतंक से मुक्त हो गया, अंदर नहीं गया वो। और उसको आदेश दिया सेनाओं को, यहाँ पर कोई आना नहीं, कभी भी इनको हाथ नहीं लगाना है। इसलिए श्रीनाथ जी में कोई टच भी नहीं किया उसने। ऊपर से अपना एक मणि निकाल के दिया, जो मणि इतना तेजस्वी है, वो श्रीनाथ जी को भेंट में दिया उसने। आज भी श्रीनाथ जी रोज उस मणि को धारण करते हैं, लेकिन आज उन्होंने तकनीकी दृष्टि से उस तेज को कम कर दिया है, क्योंकि उस मणि का इतना तेज है कि उसमें श्रीनाथ जी दिखाई नहीं पड़ते हैं। लोगों के आंखों में उसका ही लाइट आता है वो मणि, लेकिन आज भी पहनते हो यहाँ पर, लेकिन उसको उन्होंने अभी डल कर दिया है ताकि श्रीनाथ जी भी दिखाई पड़े। वैसे श्रीनाथ जी तो दिव्य, स्वयं दिव्य है, मणि से भी अधिक दिव्य है, लेकिन हमारी नज़र उतनी दिव्य नहीं ना, हमको समझता नहीं है। तो वो श्रीनाथ जी यहाँ के हैं, गोपाल जी महाराज, गोपालनाथ जी श्रीनाथ जी यहाँ के हैं, वो यहाँ से वहाँ गए हैं, ब्रज के हैं वो। और आप वहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ जैसे फील होता है ना, ब्रज की वातावरण का भावना आती है ना, वैसे आपको वहाँ पर आएगा। वहाँ पर उनको झुलाते हैं, खुड़खुड़ा बजाते हैं, खिलौना, हाथी, घोड़ा, मोर, मयूर, तोता, मैना सब रखे हुए हैं वहाँ पर, स्वीट मीट्स। हाँ, एक एक स्वीट का पीस है ना, वो 10-10 किलो का होता है, एक एक क्यूब सागर ड्राई फ्रूट का बना हुआ, ये दूध का बना हुआ, ये उस चीज़ का बना हुआ, ऐसे एक एक 2-2 किलो के, 10-10 किलो के क्यूब्स भगवान को अर्पण करते हैं। और पता नहीं कितने भोग लगते हैं, ऐसे भंडार पड़े हुए हैं मंदिर के अंदर, सब्जी मार्केट है, वहाँ से सब्जी लेके भगवान को भोग लगाते हैं। बहुत सुंदर, दिन भर दूध की धारा चलती रहती है भगवान के ऊपर, दिन भर हजारों लीटर का दूध भगवान को चढ़ाते हैं अभिषेक के रूप में। तो सब गौरव जो है ना, वो ब्रज का है, ब्रज के स्वामी वहाँ जाके ब्रज ही बसा दिया उन्होंने वहाँ पर श्रीनाथ द्वार में। आज भी आपको जाके आपको दर्शन करना चाहिए, ठाकुर जी का प्रभाव कैसे है। ठाकुर डर के नहीं भागते हैं, तो लीला करते हैं। तो ये राक्षस का बहाना है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। सब भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, अपनी भी इच्छा पूरी कर लेते हैं, सब भक्तों को संतुष्ट कर देते हैं। तो ऐसा एक गोवर्धन धाम है, भगवान की मधुर मधुर लीलाओं से भरा हुआ है। उसमें से चंद्र सरोवर, पेठा, हाँ, क्षीर सागर, चतुर्भुज विष्णु, ये सब यहाँ पर विराजमान है। प्रविष्ट गुफा, बोलो, चंद्र सरोवर धाम की, प्रविष्ट वन की, प्रविष्ट गुफा की, चतुर्भुज नारायण की, क्षीर सागर धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, राधे श्याम।